मेरे ऊर्जावान साथियों नमस्कार। आज 18 अगस्त 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 7 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी के अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं कोमल चक्रवर्ती बिजौरी मध्य प्रदेश से, आशुतोष पांडे आरा बिहार से, आरती धोलरिया जूनागढ़ गुजरात से, अजीत सिंह सतना मध्य प्रदेश से, तीर्थेश्वर झा सिंघिया बिहार से, शीतल कुमार नौटियाल ऋषिकेश उत्तराखंड से और दीपक भाटिया दिल्ली से। तो कोमल, आशुतोष, आरती, अजीत, तीर्थेश्वर, शीतल और दीपक, आप सभी सातों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, सच में मुझे यह सुनकर पढ़कर अनाउंस करते हुए बड़ी खुशी होती है, बड़ा आत्मिक संतोष मिलता है कि हमारी इस एकेडमी में जो स्टूडेंट आते हैं, बड़े शहरों के तो होते ही हैं, जैसे आपने नाम सुना है दिल्ली के भी हैं, लेकिन छोटी छोटी जगहों के भी होते हैं, चाहे वो तहसील स्तर के हों, जिला स्तर के हों और गांव के ही क्यों ना हों। इसलिए आपने देखा होगा कि गांव के जब नाम आ जाते हैं छोटी जगह का, तो उनका उच्चारण करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और सही उच्चारण करना थोड़ा मुश्किल होता है, और हो सकता है कि मुझसे कुछ गलतियां भी हो जाती हों, तो उसके लिए तो मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन हम लोगों के लिए बहुत आत्मसंतोष की बात है एकेडमी के लिए कि छोटी छोटी जगहों के लोगों तक हम लोग अपना जो कुछ भी छोटा मोटा कर रहे हैं उसका प्रकाश फैला रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही एक छोटी सी सूचना भी है, और सूचना यह है कि जैसा मैंने अभी कहा कि एकेडमी की जो ये क्लासेस हैं, ये अक्टूबर लास्ट वीक से शुरू हो रही है, नवंबर के फर्स्ट वीक में ये खत्म हो जाएंगी। एक जो हमारी सीट्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, और अब स्थिति यह है कि जो हमारे पास जो सीट्स हैं वो थोड़ी सी ही बची हुई हैं, इसलिए जो एडमिशन की जो सीट्स हैं वो कभी भी फुल हो सकती हैं। तो मैं अपने जो श्रोता हैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि यदि वो एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं तो उसे जल्दी से फाइनल रूप दे दें और जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि कभी भी सीट्स फुल हो जाने की घोषणा हो सकती है। दोस्तों, इसी के साथ ही एक और छोटी सी सूचना है, और सूचना यह है कि संडे को, अभी कल के बाद परसों रविवार को, भोपाल में एक जगह है सेंट्रल लाइब्रेरी, जो भोपाल में रहने वाले स्टूडेंट हैं वो वहां से बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। सेंट्रल लाइब्रेरी में सुबह 10 बजे मेरा एक लेक्चर है सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के बारे में ही, एग्जैक्ट 10 बजे लेक्चर शुरू हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट वहां सुनने के लिए आना चाहते हैं वो वहां आ सकते हैं। ये जो लेक्चर है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए, रविवार को यह लेक्चर है, सुबह 10 बजे है और सेंट्रल लाइब्रेरी में है। फ्रेंड्स, इसी के साथ ही कुछ और सूचनाएं, और ये वे सूचनाएं हैं जो मैं हर शुक्रवार को आप सबको देता हूं। पहला तो यह है दोस्त फ्रेंड्स कि आज शुक्रवार है, शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन शनिवार को आपको प्रेस क्लिपिंग्स मिलेंगी। साथ ही साथ योजना और कुरुक्षेत्र के टोटल 4 आर्टिकल, 2 हिंदी के 2 इंग्लिश के आपको प्राप्त होंगे। वीकली एक क्वेश्चन मेंस के पैटर्न पर आपको प्रोवाइड किया जाता है प्रैक्टिस के लिए, और जो हमारे क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस उपलब्ध कराया जाएगा। तो मित्रों, अब बात है थोड़ी सी मुख्य विषय की कि हम उस पर किस बात की चर्चा करने जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल में आज भी जो सिविल सर्विस प्री 2017 जनरल स्टडीज का पेपर रहा है उनके प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे, और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड जो प्रश्न है उन्हीं के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करूंगा। मित्रों, ये बहुत ही पावरफुल टूल्स है जो मैं अभी आप लोगों से बात चर्चा करने जा रहा हूं और पिछले दो दिनों से कर भी रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग इसे किस तरीके से ले रहे हैं, लेकिन मेरा अनुरोध है कि आप इसको हल्के फुल्के तरीके से न लें, कि मैंने बोला और आपने केवल सुन लिया, उस पर यकीन करें और यकीन करने के बाद उसको समझने की भी कोशिश करें, तभी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज तो फिर सामान्य सी बात है, आपको लगेगी और मैंने आपसे कह दिया और आपने सुन लिया। फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ी सी न्यूज पर आता हूं। न्यूज आप लोगों ने सुनी है, रेडियो न्यूज, और उसमें जो प्राइम मिनिस्टर ने कल जो हमारे स्टार्टअप जो नौजवान जो उद्यमी हैं उनसे बातचीत में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं, और सिविल सर्विस के लिए हम वहीं से अपने टॉपिक निकालते भी हैं, और मैं इसके बारे में इससे पहले भी कई बार बता चुका हूं। न्यूज सुनने के बाद आपने शायद कुछ बिंदु निकाल भी लिए होंगे। जो उसका पूरा का पूरा जो जोर था, आप देखे जो न्यूज था उसका पूरा का पूरा जोर इस बात का था कि प्रधानमंत्री ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रशासन है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें अब परिवर्तन की बहुत ज्यादा जरूरत है और सकारात्मक परिवर्तन होने चाहिए, और परिवर्तन आने भी शुरू हो गए हैं, और उन्होंने युवाओं से अपील की है कि आप भी इसमें सहयोगी बनिए, भागीदार बनिए। प्रशासन में जो परिवर्तन आने शुरू हो गए हैं या जिनके माध्यम से आगे परिवर्तन आ सकते हैं, उसके लिए उन्होंने दो तीन अच्छे बिंदु दिए। एक तो उन्होंने पारदर्शिता की बात कही, ट्रांसपेरेंसी। मित्रों, आपको जानना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से किस तरीके से प्रशासन में पारदर्शिता आ सकती है। मैं इसकी व्याख्या यहां करने नहीं जा रहा हूं, नहीं तो इसी व्याख्या पर आज का पूरा वक्त खत्म हो जाएगा। फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी की बात कही, तकनीकी से भी प्रशासन में परिवर्तन आ रहे हैं और इसे और ज्यादा किए जाने की जरूरत है। आपको मालूम होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से प्रशासन में जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करने में मदद कर सकती है और साथ ही साथ उसे ज्यादा एफिशिएंट भी बना सकती है। देखिए, भ्रष्टाचार और एफिशिएंसी बिल्कुल एक नहीं है। ठीक है, भ्रष्टाचार के कारण एफिशिएंसी कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप भ्रष्टाचार को बिल्कुल नील कर देंगे तो एफिशिएंसी बढ़ ही जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा। इस पर भी आप सब थोड़ा सा विचार करें। दो बातें प्राइम मिनिस्टर ने और कही जो मैं समझता हूं कि हो सकता है आपके निबंध का इंडिपेंडेंट टाइटल ही बन जाए, शीर्षक ही बन जाए, और यहां तक कि जो मेंस के आपके जो जनरल स्टडीज के पेपर हैं उनके वाक्य बन जाए कि आप इसे सिद्ध कीजिए, और स्पेशली फोर्थ पेपर का तो बन ही सकता है जो आपका एप्टीट्यूड वाला पेपर है। उन्होंने एक बात कही कि जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार इंडिविजुअल होता है, ठीक है, मतलब संस्थागत भी होता है, इंडिविजुअल भी होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम सिस्टम, यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर इंस्टीट्यूशंस की रचना इस तरीके से करें, बहुत ही परफेक्ट तरीके से करें, तो सबसे बड़ा प्रभाव उसका यह होता है कि जो इंडिविजुअल जो भ्रष्टाचार होते भी हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, उन पर नियंत्रण किया जा सकता है, और हम ऐसा कर रहे हैं। मतलब भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए संस्थागत तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसको अब आप सिद्ध कीजिए कि क्या भ्रष्टाचार के लिए संस्थागत कदम उठाए गए हैं, संस्थाओं में किस तरीके का परिवर्तन किया जा रहा है। मित्रों, यह भी प्रश्न मैं आप लोगों को देता हूं कि इसके उत्तर खुद ढूंढें। वक्त की कमी की वजह से मैं बताने की स्थिति में नहीं, और सच पूछे तो ये एक एक प्रश्न अपने आप में अलग से आधे आधे घंटे की डिमांड करते हैं, अगर बहुत ही एक्सप्लेनेटरी तरीके से इस पर बात की जाए तो। एक बात उन्होंने और कही जो आखिरी बात है, वो है नवाचार के ऊपर, नवाचार, इनोवेशन। उन्होंने कहा कि जो इनोवेशन है वो जीवन है, इनोवेशन ही जीवन है, और इसके बाद उन्होंने यही कही कि अगर नवाचार नहीं है तो वो ठहराव है, बिल्कुल ठहराव है। और ये भी उन्होंने कही कि जहां नवाचार नहीं है वहां गंदगी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बात कही कि देखिए कि कैसे उन्होंने इनोवेशन को एक बिल्कुल जीवन से जोड़ दिया है, है ना। इस पर भी आप लोग विचार करें। ये तीन चार बहुत महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री जी ने कल कही हैं, और ये सिविल सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप प्रशासन में ही जा रहे हैं और ये सब प्रशासन से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो इनोवेशन भी करना है वो आपको प्रशासन के संदर्भ में ही करना है। नो डाउट कि राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में भी करना है, जो जहां है वहां वो इनोवेशन कर रहा है, जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में कुछ ना कुछ वो नई खोजें कर रहा है, नई चीजें ला रहा है। मित्रों, अब मैं दो तथ्यों पर आपका ध्यान और ले जाना चाहूंगा जो अलग से हैं, जो न्यूज के हिस्से नहीं है लेकिन अखबारों में हमें पढ़ने को मिले हैं। पहला तो यह कि भारत ने अपाचे नाम का लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया है। अपाचे, ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, सामान्य हेलीकॉप्टर नहीं है, और ये अमेरिका से खरीदा जाएगा। ये आप न्यूज अखबारों में छपी है, ये आपको मालूम हो कि अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और ये अमेरिका से खरीदा जा रहा है। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि अभी गोरखपुर में जो अस्पताल में इतने बच्चों की मृत्यु हुई है, उस अब देखें कि उसमें एक बीमारी का नाम आ रहा है एनसीफेलाइटिस। ये जापानी बुखार है, इसको दिमागी बुखार भी कहते हैं, है ना, मतलब दिमाग में बुखार चढ़ जाता है। मित्रों, मैं चाहूंगा कि आप इस पर थोड़ी सी तैयारी करें कि ये क्या है। अगर आप इससे पहले के 2-3 साल के पेपर उठा करके देखेंगे तो मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है कि 2016 में एक प्रश्न पूछा गया था जो डेंगू वायरस को लेकर के था। इसके बाद अभी 2017 में जो प्रश्न पूछा गया है वो जीका वायरस को लेकर है। और यदि आपने एक वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पर, आप देखेंगे कि 2017 के में कौन कौन से करंट अफेयर्स पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो मैंने शायद 97-98 ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, उसमें जीका वायरस है। तो एक साल डेंगू पूछा गया, उस समय डेंगू का प्रकोप था, फिर जीका वायरस पूछा गया, जीका का प्रकोप था, हालांकि भारत में नहीं था ज्यादा। तो अब चूंकि गोरखपुर में इतना बड़ा कांड हुआ है, इस बुखार से जुड़ी हुई भी वो घटना है, तो आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि इसके क्या क्या लक्षण है, ये क्यों फैलता है। इनफैक्ट दोस्तों, ये वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन बैक्टीरिया और फंगस से भी इसे फैलता हुआ पाया गया है, लेकिन मेनली ये वायरल इन्फेक्शन है। जो एचआईवी से पीड़ित जो एरियाज होते हैं, जो लोग होते हैं, उनमें ये इनकी संभावना थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि एचआईवी क्या करता है कि हमारे शरीर के इम्यून पावर को कम कर देता है, और जब इम्यून पावर कम होता है तो ये वायरस अटैक करते हैं। और होता यह है कि ये वायरस दिमाग पर अटैक करते हैं, और इसकी सबसे बुरी बात है कि ये बहुत तेजी से अचानक अटैक करते हैं और फिर बहुत तेजी से ये बॉडी में फैलते हैं। और जब अटैक करते हैं तो एकदम बुखार आएगा, आपको तेज बुखार आएगा, सिर में दर्द हो जाएगा, यहां तक कि कंफ्यूजन सा होने लगेगा, दिमागी भ्रम हो जाएगा, क्योंकि दिमाग पर अटैक हुआ है, मतलब झपकियां सी आने लगेंगी, डाउजीनेस जिसमें कह लीजिए बेहोशी जैसी हालत होने लगती है। तो ये इसके थोड़े से लक्षण है, तो इस पर भी आपको थोड़ी सी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं अपने मुख्य विषय पर, और आइए मैं अब फिर से कुछ प्रश्नों की चर्चा आपसे करता हूं, लेकिन मैं एक प्रश्न से ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, ये ऐसा मुझे लगता है। क्वेश्चन पेपर सेट ए का आप पहला ही प्रश्न उठाकर देखें। मित्र, इसके माध्यम से मैं आपको एक सिद्धांत भी बताना चाह रहा हूं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन का। पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है, यानी कि नॉमिनेटेड है। दूसरा स्टेटमेंट है, हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है, राइट। और इसके बाद कथन दे दिए गए हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, और फिर दिया है ना तो एक और ना ही दो। ये आप लोग अपने सेट ए के पेपर में अगर आपके पास है तो ना क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, अदरवाइज अगर दूसरे सेट का पेपर है तो किसी भी पेपर से देख लीजिए, और उसमें आप अंग्रेजी का मैच कर लीजिए। मित्रों, मैं जानबूझकर अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इस प्रश्न को हल नहीं करना है, मुझे इसके माध्यम से आपके लिए सिविल सर्विस के प्रिपरेशन का एक रास्ता तैयार करना है, एक दृष्टि आपको देनी है कि तैयारी इनफैक्ट होती कैसे है। अब आप देखिए कि इसमें गैर सरकारी विधेयक शब्द यूज किया है, कभी कभी इसके लिए प्राइवेट विधेयक भी शब्द यूज होता है, निजी विधेयक शब्द भी यूज होता है हिंदी में, निजी विधेयक। मित्रों, अब आपको लग रहा होगा कि तो क्या हम पॉलिटिकल साइंस है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सब कुछ पूछे, ऐसा लगता है ना। लेकिन आप नीचे सेकेंड स्टेटमेंट में देखेंगे तो उसमें वर्ड दिया हुआ है हाल ही में, यानी कि क्या शो कर रहा है, इसका संबंध सीधे सीधे करंट अफेयर्स से है। तो यानी कि ये जो प्राइवेट बिल के बारे में पूछा गया है तो कॉन्स्टिट्यूशन से, ये नहीं कि कुछ भी उठा करके पूछ लिया गया है, इसका संबंध करंट अफेयर्स से है, सीधी सी बात है। अब आपको मैं टाइमिंग्स बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सिविल सर्विस में जो हाल ही में शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो आप परीक्षा दे रहे हैं जून में, तो हाल ही में का क्या मतलब है, क्या जनवरी हाल ही में है, या जो दिसंबर हाल ही में है, या सितंबर हाल ही में है, कहां तक हाल ही में है, इसको समझ लीजिए दोस्तों, तब आप करंट अफेयर्स के टाइमिंग्स को समझ सकेंगे, राइट। जैसे जून में परीक्षा होनी, जैसे अभी 2018 की जो परीक्षा है वो 3 जून को होनी है, राइट। जून मान लीजिए कि 1 जून की शुरुआत में एग्जाम है, जून के शुरुआत में मान करके चलिए कि इससे 3 महीने पहले, 2 महीने पहले ही तो पेपर बन चुके होंगे, क्योंकि देखिए पेपर बनते हैं फिर उसमें बहुत बड़ी प्रक्रिया है, उसमें गुप्तता भी, सीक्रेसी भी रखनी पड़ती है, तो एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। तो मिनिमम 2 मंथ्स, मैक्सिमम 3 मंथ्स। तो अब जून से आप 2 महीने करेंगे तो क्या आ जाएगा, मई और अप्रैल, अप्रैल मई, हम अप्रैल मई को मान लेते हैं, 2 महीने ही मानिए। इसका मतलब है कि अप्रैल के बाद से जो भी घटनाएं घटी हैं वो अब इसमें नहीं आएंगी, अप्रैल शुरू से लेकर जो घटनाएं घटी हैं इसमें अब नहीं आएंगी। इसका मतलब हुआ कि जिस साल आप परीक्षा में बैठ रहे हैं, राइट, उससे 1 साल पहले से लेकर के 2 महीने पहले तक की जो घटनाएं हैं वो करंट अफेयर्स में आएंगी। जैसे कि 2018 के एग्जाम में आप जून में बैठ रहे हैं, 2017 में आप बैठ चुके हैं, वो भी एग्जाम आपके जून में हुए थे, तो 2017 के जून एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए वो पूछे गए अप्रैल से पहले के क्वेश्चन पूछे गए, अप्रैल मई के नहीं पूछे गए, जून में आपसे एग्जाम ले लिया गया। तो अब दो जो 2018 में जो पूछा जाएगा, इसका मतलब है कि ये मान करके चलिए कि मार्च 2017 से लेकर और मार्च 2018 तक ये आपका 1 साल का पीरियड हुआ, और इस 1 साल के पीरियड को आप कहेंगे हाल ही में, ये करंट का आपका ड्यूरेशन हो गया। इसे थोड़ा सा आप 2-3 महीने और बढ़ा दीजिएगा, है ना, ये आपका सवा साल का पीरियड हुआ, ये करंट पीरियड कहलाता है, राइट। अब इसमें आप देखेंगे कि जो गैर सरकारी विधेयक है ये मार्च 2016 में शशि थरूर जी ने पेश किया था होमोसेक्सुअलिटी पर, और इस पर बहुत चर्चा हुई, अखबारों में इस पर बहुत लिखा गया, ये कोई नई घटना नहीं है, अनजानी घटना नहीं है, या छोटी सी ऐसी फुलझड़ी की तरह घटी हुई घटना नहीं है, बल्कि खूब लिखा गया। और यह भी लिखा गया और बड़ा वेल नोन है कि उनका जो विधेयक था वो गिर गया, पारित नहीं हो सका। गैर सरकारी विधेयक पारित होना बहुत मुश्किल है, पहली बात। अब इसका देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ऐसा विधेयक है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत, तो भैया भारत के राष्ट्रपति कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं, राज्यसभा में 12 लोगों को, लोकसभा में 2 लोगों के एंग्लो इंडियंस, तो क्या गैर सरकारी विधेयक आप उसे ही कहेंगे जो 14 लोग पेश करेंगे, बाकी लोग जो पेश करेंगे उनको आप क्या कहेंगे। साफ शब्द है गैर सरकारी, यानी कि जो सरकार के द्वारा पेश नहीं किया गया है। सरकार कौन है, आपको अगर ये डेफिनेशन मालूम है, ये बेसिक मालूम है, तो जो सरकार है उसके द्वारा पेश किया गया विधेयक सरकारी विधेयक है, और जो सरकार में नहीं है उनके द्वारा पेश किया गया विधेयक गैर सरकारी विधेयक हैं, चाहे फिर वो चुनकर आए हों चाहे उन्हें राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया हो। बहुत ही सिंपल सी बात है, और इन 2 तथ्यों को समझने के बाद, पकड़ने के बाद, आपको क्या नहीं लगता है कि आप इस प्रश्न का आंसर बड़े आराम से दे लेंगे, और किताबों से सिर्फ पढ़कर इसका आंसर देना आसान नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको 2 बातें बताई हैं, पहला कि आप देखिए कि करंट पीरियड क्या होता है, मैंने एक उदाहरण के जरिए, एक जीवंत उदाहरण के जरिए, व्यावहारिक उदाहरण के जरिए आपके सामने स्पष्ट किया है। दूसरा यह कि फिर आप आंसर निकालेंगे कैसे। तो मित्रों अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर के मैं अब अंतिम चरण में आता हूं, जो ईमेल का चरण है। तो ईमेल का नहीं, इससे पहले तो मैं प्रेस क्लिपिंग्स की बात करूं, और उसमें बात करने के लिए अब वक्त है नहीं, वो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग देख लेंगे। अंतिम चरण ईमेल का है, तो सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, मोहित तनेजा जो बीएचयू वाराणसी से हैं, शिपलापुरी मोहाली पंजाब से हैं, शोमैन मंडल अमतला वेस्ट बंगाल से, मोहम्मद इरफान फतेहपुर उत्तर प्रदेश से, हर्षिता गुप्ता कुंजपुर उत्तर प्रदेश से, अक्षय पवार, सौरभ राठौर और दुर्गेश्वरी त्रिपाठी श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही अब आप सबसे मैं दो दिन की इजाजत चाहता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। सोमवार को आप सबसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।